ठीक है, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयरियारं, नमो उभयचायारं, नमो सहस्राहुरं। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणि, मंगलं कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्व मंगल मांगल्यम्, सर्व कल्याण कारकम्, प्रधानं सर्व धर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार, गीत राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव कार, नमः प्रयोग संहार के। छेदाना ग्रंथ पर हम लोग पिछले कुछ सालों से चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों में से कोई बताएगा अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक चर्चा कर ली है? हेलो,
क्यों बनवे?
हेलो,
सॉरी सॉरी, हाँ मैं म्यूट किया अपने आप को। हाँ, बार भी हमने शुरू की थी अनुभव जी, परंतु उसमें थोड़ी सी ही चर्चा हुई थी। पिछली काल में बार बार तीन वचन में शंका न सम्यक करके
तीन काल तक हम कर पहली ढाल जो हमने पढ़ी उसमें चार गतियों के दुखों का वर्णन था। उसका पूरा शुरुआत हमने काल की गोद में जाए, उसके बाद फिर हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ रेंज गति में आए, मनुष्य गति में आए, देव गति में गए, और देव गति से वापस तहते से खाभर चल गए। क्यों? क्योंकि हमने सम्यक दर्शन नहीं पाया। सम्यक दर्शन नहीं किया तो फिर हमने जो कुछ भी किया वो हमको किसी किसी काल में हम कभी संगी पंचेंद्रिय तो बन पाए, त्रिंज बने, मनुष्य बने, देव भी बने, बट वो सब कुछ उसका एंड रिजल्ट निगोद नहीं जाकर पूरा हुआ। फिर ये मिथ्यात्व जो है, जो सम्यक दर्शन का अभाव है, इसका क्या स्वरूप है? ये मैं दूसरी डाल में पढ़ा था और उसमें सात तत्व संबंधी भूल, मिथ्यात्व के कितने प्रकार और मिथ्यात्व का क्या फल, ये सारी बात हमने दूसरी डाल में पढ़ी थी। और तीसरी ढाल जो की सम्यक दर्शन की ढाल है, उसमें अभी तक चलते हुए हम लोग निश्चय सम्यक दर्शन की बात कर चुके हैं कि आत्म को है सुख सो सुख, आकलता भी कहिए तो पर द्रव्यम के भिन्न आप में जी सम्यक भला है। कि निश्चय से तो आत्मा का, आत्मा की श्रद्धा करना, ज्ञान करना और उसी में लीन हो जाना, ये सम्यक है। और फिर व्यवहार सम्यक में सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धा, जो दूसरी डाल में उन संबंधी भूल बताई थी, उस एक एक भूल को खत्म करते हुए सात तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धा जो होता है उसका यह वर्णन हुआ। और अब जो जिस पर हमने लास्ट टाइम डिस्कशन पूरा छोड़ा था वो ये था कि जो सम्यक दृष्टि थी, जब सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन कर लेता है, व्यवहार में उसको तत्व की यथार्थ श्रद्धा हो जाती है, तो अब उसके जीवन में ऐसे कौन से गुण हैं जो प्रकट होते हैं, जिनको सम्यक के आठ अंग बोलते हैं? तो वो बारवा छंद है, हम उससे भी चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक बार छंद पढ़ते हैं। जिन बचने शंका न धार वृष भव सुख वांछा पाने मुनि तन न लिन न देख गिनावे तत्व को तत्व पिछाने मुझ गुण अरूपर और गुण घाके वाणिज धर्म बढ़ावे कामादिक कर दृष्टे चिकते मुझ पर को सुझे आवे सम्यक दर्शन के 25 दोषों के नाम कौन बताएगा? एनीवन? सम्यक दर्शन में जिन 25 दोषों का अभाव हो जाता है वो कोई बताएंगे? हेलो हेलो
हाँ सम्यक दर्शन से 8 अंग तो 8 हुए वहाँ एक तीन मूर्ता हुएगी तीन मूर्ता फिर छह अनायतन
तो एक तो 8 अंग का उल्टा 8 दोष हो गए शंका कांक्षा चिकित्सा ये सारे 8 दोष 3 मूर्ताएं 6 अनायतन और एक और चीज रह गई 8+3=11+
8 मद होय छे
8 मद
8 मद और 8 मद 8 मद 8 प्रकार के मद होते हैं तो 17+8=25 25 दोष हो गए
तो 8 मद क्या 11वीं गाथा में से ये लेवाना ने 8 मद 3 मूर्ता 6 अनायत 8 संकादी दोष
11वें छंद में दिया है
11वें छंद में
3 मूर्ता 6 अनायतन और 8 शंकादी जो दोष है इनसे रहित होकर इनका जो त्याग करता है और 4 चीजें 4 अलग चीजें प्रकट होती है उसको संवेग अनुकंपा आस्तिक्य और प्रशम प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य ये 4 उसको गुण प्रकट होते हैं इनमें 4 की वो भावनाएं भाता है और ऐसे 8 अंग को प्रकट करके 25 दोष को खत्म करता है वह सम्यक दृष्टि कहलाता है राइट तो अब इसमें जो सबसे पहले 8 दोष है शंका कांक्षा इत्यादि उसके अपोजिट उनके अभाव में जो 8 अंग प्रकट होंगे उनकी चर्चा यहाँ पर शुरू होगी तो ये सब इनको प्रकट करने के लिए सम्यक दृष्टि कोई मेहनत नहीं करेगा कि नहीं मैं सारी इच्छाओं का त्याग करता हूँ मैं मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा मैं पूरा श्रद्धा रखूंगा जैन वचन पर ऐसा नहीं करता ये रिजल्टेंट है जिसने आत्मा की श्रद्धा करी है जिसने सातत्व का यथा श्रद्धान किया देवशास्त्र गुरु का यथा श्रद्धान किया उसको ये 8 अंग प्रकट होते हैं तो प्रकट होना मतलब समथिंग ये आपको रिवॉर्ड में मिला है जैसे ये आपने प्रगट किया तो है बट ऐसा नहीं कि मेरे पीछे लगे तो ये प्रगट हुए करना क्या है मतलब हम यदि आत्मा का श्रद्धान करेंगे देवशास्त्र गुरु का करेंगे सातत्व का करेंगे तत्वा श्रद्धान करेंगे तो उसके फल में ये 8 अंग प्रगट होंगे ठीक है जैसे कि व्रतों का है ये जो व्रत होते हैं ना अनुव्रत होते हैं महाव्रत होते हैं ये व्रत प्रकट होते हैं ये किए नहीं जाते जैसे कि हमें और आपको मध्य मांस मधु होती है हम मांस नहीं खाते हम शराब नहीं पीते राइट हम रात में भोजन नहीं करते तो ये इसके लिए हमने मेहनत नहीं करी है ये अपने आप हमको इनका त्याग प्रकट हो जाता है राइट हमको सोचना नहीं पड़ता उस कषाय संबंधी मंदता आती है तो तत् संबंधी विकल्प अपने आप ही उत्पन्न होते तो हमको अपने आप वैसे कि मैं चोरी करूं मैं शिकार करने जाऊं मैं जुआ खेलूं ये वाले विचार ही नहीं आते तो ये क्या हुआ, इनका प्रगटता हुआ। इनकी प्रगटता कब हुई, जब वो कषाय इतनी मंद हो गई। तो ऐसे ही जब अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है तो जीवन में न्याय और नीति अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जब वो कषाय चली जाती है अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष अनावरण, अपने आप जीवन में अनुव्रत प्रकट होते हैं। तीन चली जाती है तो महाव्रत आदि के परिणाम जीवन में अपने आप प्रकट होते हैं। ऐसे ही सम्यक्त होने पर, अनंतानुबंधी कषाय के जाने पर, दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम क्षय उपशम होने पर क्या होता है, ये आठ अंग प्रकट होते हैं। उसमें पहला अंग है जिन वच में शंका न धार। जिन वच, जिनेन्द्र देव के वचन, उसमें शंका डाउट, ये ठीक है कि सही है कि ऐसा ही है कि कुछ और भी है, शंका न धार। उसको अपने आप सातत्व का निर्णय होने पर, जिन्होंने सातत्व का स्वरूप बताया उनके वचनों पर शंका नहीं होती। इस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया था लास्ट टाइम। सर्वज्ञ देश के कहे हुए तत्वों में संशय संदेह धारण नहीं करेगा। और हमने तो बहुत सारी बातें करी थी, हमने तीन लोक की रचना के बारे में भी बात करी थी कि लोगों को डाउट होता है कि कैसे चांद पर हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये सारी बातें। और ये जो की बातें बाहर की है, जिनके होने नहीं होने से हमारे जीवन का कोई लेना देना भी पड़ता नहीं, फिर भी ऐसी बातें जो जिनेन्द्र देव की हमारे जीवन को सीधे इम्पेक्ट नहीं करती, जैसे कि राम जी हुए कि नहीं हुए, महाभारत का युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, पांच पांडव थे कि नहीं थे, यशोधर मैया का उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी बातें इनसे हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मेरे वर्तमान जीवन की आराधना में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, राइट? भगवान का जब जन्म हुआ तो उनको मेरु पर्वत और पांडव शिला पर ले गए कि नहीं ले गए, ये वाली बात से मेरी आज की लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं होती, राइट? तो फिर ये वाली बात सच है कि झूठ है, इसको मानना कि नहीं मानना, ये वाला राइट तरीका नहीं होगा कि भाई ठीक होगा तो होगा, ठीक नहीं होगा तो नहीं होगा, हमें क्या लेना देना, ऐसा नहीं, ये एटीट्यूड नहीं होगा सम्यक दृष्टि का। उनका प्रोसेस ऐसा रहेगा कि पहले तो मैं भगवान से वो पूछता हूँ, भगवान की जो परंपरा से चले आए शास्त्र है, आचार्य है, मैं उनसे वो पूछता हूँ कि भाई मेरे जीवन को जो इम्पेक्ट करता है पहले आप वो वाली बातें बताओ, तो वो बताएंगे कि देखो तुम्हारे जीवन में तो ये है, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष, कर्म आठ कर्म, आपके परिणाम, आपकी कष्टों की तीव्रता मंदता, ये सारी चीजें हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करती है। जब मैंने इनको देखा, इनको समझा, ये तर्कयुक्त लगा, न्याय संगत लगा, तो मुझे पता पड़ा कि हाँ, मैंने बाकी सारे लोग जो कह रहे हैं वो भी सुना, और जो भगवान के शास्त्र कह रहे हैं, उनकी परंपरा में आचार्य कह रहे हैं, ये सुना, तो इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये सही बात बोल रहे हैं। जब वो ये वाली बात बोल रहे हैं, बाकी सारी बातों को जब मेरे काम की वो है नहीं, तो वो जैसी बोलते हैं मैं वैसी की वैसी उसको स्वीकार कर लेता हूँ, ये वाला थॉट प्रोसेस सम्यक दृष्टि का रहेगा। हाँ, मैं भी उनको सिद्ध करने की कोशिश करूँ तो वो हो भी सकती है, वेगली सिद्ध हो सकती है, युक्ति से सिद्ध हो सकती है, अनुमान से सिद्ध हो सकती है, इतिहास से सिद्ध हो सकती है, हम हिस्ट्री में जाके देखें थोड़ा उसका खनन करें तो हो सकती है, लेकिन मुझे इतना अभी नहीं, मेरे पास बहुत छोटा जीवन, मेरा उपयोग बहुत सीमित लिमिटेड है, हमारे पास इतना सारे, हमारे पास माइंड को डाइवर्ट करने वाली चीजें हैं। तो जिनेन्द्र देव ने जो बोला ठीक है, जैसे अंजन चोर ने जो किया था कि अच्छा पक्का वो सही थे को वो विद्या सिद्ध हुई है ना, वो सही में उड़ते हैं ना, यहाँ भी वो तो उड़ते हैं, अपन प्रकाश गामी विद्या सिद्ध हुई है, तो फिर बोला ठीक है, मुझे सेठ जी ने जो बोला मंत्र दिया उस पर भरोसा है, और फिर उसने सीधे ऊपर चढ़ गया और उसने मंत्र पढ़ा और कास्ता गया, राइट? तो उसने यहाँ पर नहीं, नहीं, नहीं क्या प्रूफ है, क्या है क्या नहीं, इतना नहीं, उसने बोला कि हाँ जो सेठ कह रहे हैं उनके मंत्र में जरूर सम्यकता होगी, कुछ होगा, वो कर गया राइट। ऐसे ही जिसने आत्मा की अनुभूति करी, सात तत्व का विचार किया, उसको जिनेन्द्र देव के तत्व पर कोई भी शंका नहीं है, ये उसका निशंकित अंग है राइट। निशंकित अंग के अंदर हमने उस टाइम भी बहुत डिस्कशन किया था, इसके अंदर सर्वज्ञ देव की सिद्धि आ जाती है, बिना सर्वज्ञता का विश्वास हुए निर्ग्रंथ देव के वचनों पर विश्वास नहीं आ सकता राइट। सर्वज्ञ होते कि नहीं होते ये हमको कैसे पता पड़ेगा, हेलो
सर्वज्ञ देव हम वैसे तर्क से, तर्क बुद्धि से समझ सकते हैं कि हमारे से और कोई ज्यादा जानता है, उससे कोई और ज्यादा जानता है, तो सब जानने वाला भी कोई होएगा ही।
ओके, तो सब जानने वाला भी कोई होगा, तो फिर कोई ऐसा भी तो होगा जो बिल्कुल भी ना जाने, ऐसा भी कोई चीज है जो बिल्कुल भी नहीं जानता? इस लॉजिक से जाएंगे कि हम सभी के, आप ये बोल रहे हैं कि हम सभी के ज्ञान कम ज्यादा है, कोई कम जानता है कोई ज्यादा जानता है, तो ऐसा भी कोई होगा जो सब कुछ जानता होगा राइट।
हाँ, हाँ।
तो ऐसा भी कोई होना चाहिए जो बिल्कुल भी नहीं जानता,
अगर अगर क्योंकि स्वभाव ज्ञान है, तो ज्ञान तो अगर नाश होएगा तो फिर जड़ हो जाएगा, तो थोड़ा सा तो ज्ञान का अंश प्रकट होता ही है, तो वैसा कुछ भी नहीं जानता वैसा तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा तो
अरे बट हम जब फ्लक्चुएशन देख रहे हैं तो टोटल पॉजिटिव फ्लक्चुएशन भी जानी चाहिए, टोटल नेगेटिव भी जानी चाहिए, यदि कोई फिर आप ठीक है पूरा जैसे अज्ञानी को नहीं मान रहे कि नहीं पूरा तो ज्ञान रहेगा, ऐसे पूरा ज्ञान भी नहीं रहेगा, थोड़ा कम रहेगा पूरे से, बहुत हो सकता है लाइक बहुत सारा हो सकता है, कुलकुंडाचार्य देव को इतना सारा ज्ञान था, श्रीमद्राचार्य को इतना सारा ज्ञान था, तो बहुत हो सकता है, बट पूरा होगा ये वाली बात क्यों कर रहे हैं हम
अगर अगर आप क्रमबद्ध से भी ये इसका सोच सकते हैं कि अगर वस्तु पर्याय सब क्रमबद्ध है तो कोई ऐसा होगा उसको मालूम पड़ता होगा तभी,
तो उल्टा हो जाएगा, क्रमबद्ध की सिद्धि सर्वज्ञता से होती है, क्रमबद्धता से सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होगी,
वो अदर वे होता है बराबर।
हाँ तो क्योंकि यदि हम ये बोलेंगे क्रमबद्ध इसलिए सर्वज्ञ थे, तो फिर वो जो क्रमबद्ध नहीं मान रहे वो लोग तो ऐसे ही बोलने लगेंगे, जो आपका तो बेसिस ही फ्लॉड हो गया, तो सर्वज्ञता सिद्ध होगी तो क्रमबद्धपना सिद्ध होगा
मगर आपने पहले बताया ना
कैसे होगा,
कोई ओछू जाने कोई वधू जाने तो कोई पुरु जाना
આપનો આપનો પ્રશ્ન શું છે એ સમજાતો નથી, બહુ ધીમું સંભળાય છે અહીંયા કવર ની,
હા એટલે થોડુંક વોલ્યુમ પોતાની બાજુથી, હા આપકી અવાજ થોડી લો તો આતી હૈ મેને તો અપના વોલ્યુમ બઢાયા હા દાદા,
હા અમારા વોલ્યુમ તો બઢાયા લેકિન બહુ સુનાઈ નહીં દેતા હૈ ઇધર,
અચ્છા ઓકે, નહીં મેરા પ્રશ્ન યે હૈ કે सर्वज्ञ, क्योंकि यदि मुझे निशंकित अंग चाहिए मतलब मुझे डाउट नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, तो शंका कब होगी जब मुझे पूरा प्रतीति पूरा विश्वास होगा कि ये वाले वचन प्रमाणिक है, ये ऑथेंटिक है जो भी बोल रहे हैं, और प्रमाणिक वचन सर्वज्ञ के ही होते हैं, अल्पज्ञ के नहीं होते, जो सब कुछ जानता है वो ही सच बोल सकता है, जो थोड़ा जानता है उसकी बात सच नहीं हो सकती राइट। तो सर्वज्ञ होते हैं कि नहीं होते, ये कैसे पता पड़ेगा? कॉन्फिडेंस तो हमको तभी आएगा ना कि पॉसिबल है कोई सर्वज्ञ होता है। तो एक उत्तर आया था कि जैसे कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है, तो कोई ऐसा होगा जो पूरा जानता है। बट ऐसे तो फिर ये सब ही होगा, कोई जो बिल्कुल नहीं जानता। हाँ हेलो।
हाँ वो तो नहीं, फिर वो बिल्कुल नहीं जानता वैसा नहीं कह सकते।
अरे क्यों नहीं कह सकते, बिल्कुल भी जानने वाले तो होते हैं कि नहीं होते जो बिल्कुल भी नहीं जानते?
नहीं होते, क्योंकि जो है ज्ञान का उखाड़ तो निगोदिया जीव को भी थोड़ा सा तो होता ही है। तो वैसे कह सकते कि स्वभाव का
तो कह सकते हैं ना। हाँ ऐसा भी, हाँ तो ऐसा भी कह सकते हैं ना कि जो बिल्कुल नहीं जानता वो अजीब हो जाता है, राइट? जो बिल्कुल नहीं जानता वो जड़ हो जाता है, जैसे आपने बोला अजीब हो जाता है, राइट?
हाँ।
तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि ऐसा कोई द्रव्य, जो ऐसा कोई जीव नहीं है जो बिल्कुल नहीं जानता? हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि हाँ जो नहीं जानता बिल्कुल भी, ऐसे भी द्रव्य है पर बस वो जीव नहीं कहलाते क्योंकि वो जानते नहीं है।
बराबर, वो वैसे
तो हमारा आर्ग्यूमेंट स्टेबल बना रहेगा, राइट? हाँ हम मान रहे हैं ऐसे भी कोई द्रव्य है जो बिल्कुल नहीं जानते, वो कौन से? वो जब जानते नहीं तो उनको जीव कैसे बोले? बट द्रव्य तो है, घर में द्रव्य बिल्कुल नहीं जानता, बिल्कुल अमूर्तिक है। आकाश द्रव्य बिल्कुल जीव जैसा अमूर्तिक है बट बिल्कुल नहीं जानता, उसमें नहीं है लेकिन द्रव्य तो है। तो नहीं जानने वाले द्रव्य तो ऑलरेडी है, तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो पूरा जानता हो, राइट? वो एक स्टेबिलिटी तो आ गई एक सही थी हमारे पास, राइट? बट इसकी प्रॉपर सिद्धि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसकी सिद्धि ऐसे होती है जो आचार्य समंत भद्र ने करी आपकी मानसा ग्रंथ में। उन्होंने बोला तीन टाइप की पदार्थ होते हैं इस दुनिया में जिनको हम सब कठिनाई से जान पाते हैं, हम सबको जानना बहुत कठिन लगता है। पहला पदार्थ होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब जैसे कि ये जो हमारे घर की बिल्डिंग पूरा बना हुआ है, फर्नीचर बना हुआ है, ये तो पूरा आपको दिख रहा है, जिसका स्मॉलेस्ट हम पार्टिकल लेंगे ना, इसको तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, जो सबसे छोटा एटम होगा, परमाणु होगा, वो हम आंखों से नहीं दिख पाएंगे, वो सूक्ष्म होता है, राइट? ये बन गया है क्योंकि बहुत सारे परमाणुओं का एक स्कंद है, लेकिन एक परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है, वो हम लोग नहीं देख पाते। तो एक तो हो गया सूक्ष्म जिसको हम नहीं देख पाते। दूसरा होता है अंतरिक्त, मतलब अभी हम राम जी को नहीं देख पाएंगे, महावीर भगवान को नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वो इस टाइम पीरियड में नहीं है, वो हमारे काल से अंतरित है, डिफरेंस है हम दोनों के टाइम पीरियड में। मैं आज हुआ हूँ, महावीर भगवान 1000 साल पहले हुए थे, राइट? मैं और शैनिक जो आगे तीर्थंकर बनेंगे उनको भी नहीं देख पा रहा हूँ, तो हाउ डू आई प्रूफ कि वो तीर्थंकर बनेंगे शैनिक राजा? नहीं कर पाऊंगा मैं प्रूफ, क्यों? क्योंकि टाइम का डिफरेंस है, राइट?
हाँ।
दो चीजें हो गई, एक तो मेरे पास पास्ट और फ्यूचर में कौन है उनका कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि मैं उनको नहीं देख सकता, क्योंकि वो है ही नहीं अभी, अभी महावीर भगवान है ही नहीं, अभी राम लक्ष्मण युधिष्ठिर भीम ये सब कोई है ही नहीं, राइट? हम बारे पाव में पढ़ते ना, कहाँ गए चक्री जिन सीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ गए वो लोग, है ही नहीं, कहाँ ढूंढे हम उनको? आंतरिक, पहला सूक्ष्म जो हम देख नहीं पाते, बहुत सूक्ष्म होता है। दूसरा अंतरित जो हमारे आजू बाजू है ही नहीं तो हम उसको कैसे देखें? और तीसरा दूरार्थ, दूरवर्ती, जैसे तो मेरू पर्वत कहाँ पर है? आपको पता है? नहीं पता कहाँ पर है, हम जाकर कहाँ से देख ले? मेरू पर्वत हमें दिखते ही नहीं है। गंजेश्वर द्वीप कहाँ पर है? नो क्लू। लवण समुद्र कहाँ पर है? नो क्लू। ऐरावत क्षेत्र कहाँ पर है? विदेह क्षेत्र कहाँ पर है? ऋषभ नील रुक्मिणी शिखरी ये वाले पर्वत कहाँ पर है? राइट इन सब का भी हमको कोई क्लू नहीं है, क्योंकि बहुत दूर है हमसे, हम सबसे छोटे से एरिया में है। जितना ये दूर है, क्योंकि सुमेरु पर्वत की यहाँ से दूरी कहाँ पर है? विदेह क्षेत्र के बीच बीच नाभि में है। यहाँ से विदेह क्षेत्र कितना दूर है? कभी बहुत दूर है, 1,00,000 युजन का जम्मू द्वीप है, उसके 1/19 पार्ट में तो हम रहते हैं, 19वें भाग में छोटा सा, उसका भी बहुत छोटा सा भाग तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, अमेरिका, एशिया, यूरोप, ये सब तो उस भारत क्षेत्र के सबसे नीचे छोटा सा पार्ट है, सारे के सारे कॉन्टिनेंट जिसमें हमारी पूरी ज्योग्राफी आज की। तो ये दूरवर्ती पदार्थ को भी हम नहीं देख पा रहे हैं। तो नाउ लॉजिक इज कि ये हम नहीं देख पाते, राइट? बट हम इनको जान पाते हैं ना। हेलो,
हाँ अनुमान से।
हेलो,
हाँ अनुमान से। हाँ,
आपको याद आ गया। करेक्ट करेक्ट। सो सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा तस्य चिद्यथा अनुमेयत्वतो ज्ञाति रीति सर्वज्ञ संस्थिति। सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ हम प्रत्यक्ष तो नहीं जान पाते, पर मैं जैसे अपने घर का ये फर्नीचर देख रहा हूँ तो इससे अनुमान से पता पड़ता है कि छोटे छोटे परमाणु भी होंगे तभी तो इतना बड़ा बना, राइट? मैं इतने सारे शास्त्रों में मेंशन पढ़ता हूँ, अपने नहीं हिंदुओं के शास्त्र में भी पढ़ता हूँ, हिस्टोरिकल लेख देखता हूँ, इतने सारे शिला लेख मिलते हैं तो मुझको पता पड़ता है कि हाँ ये राम जी होंगे तो, राइट? मैं जब इतना सारा कुछ देखता हूँ दुनिया की रचना को, तब मुझे पता पड़ता है कि हाँ जितना ये जैसे इतना मैं जान रहा हूँ, इतनी बड़ी गैलेक्सी है जो हम टेलीस्कोप से देख पा रहे हैं, तो कुछ और रचना भी होगी इस दुनिया में। तो ऐसा जब मैं अनुमान से देख पा रहा हूँ तो जो किसी के अनुमान का विषय होता है वह किसी ना किसी के प्रत्यक्ष होता ही है, ये रूल है। जैसे कि मैं पहाड़ पर गया और मुझको धुआं दिखा, यदि मुझे धुआं दिखा तो मैंने क्या जाना कि आग लगी है। तो मैंने कैसे जाना कि जहां जहां आग होती है वहां वहां पर, मतलब जहां जहां धुआं होता है वहां वहां पर आग होती ही है, बिना आग के धुआं होता ही नहीं है। पर ये मैंने कैसे जाना? ये तो मैंने तो आग देखी नहीं, मैंने कैसे जान लिया कि अरे मैंने नहीं जाना लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे बचपन में बताया था। उनको कैसे पता पड़ा कि उनको भी किसी ने बताया था, उसको कैसे पता पड़ा कि अरे उसने प्रत्यक्ष देखा था, किसी ने प्रत्यक्ष देखा था तो आज वो हमारे पास एज ए इंफ्लुएंस आ पाया, राइट? करेक्ट, ठीक है। तो जो किसी ना किसी के अनुमान का विषय होता है वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष होता ही है, राइट? आपने बोला ये मेरे पास ये वाला सर्कल है, इसका एरिया कैसे निकालना है? तो किसी ने बताया कि आप पाई आर स्क्वायर कर लो, आपको पाई पता है, आपको रेडियस पता है उसकी, आप फॉर्मूला लगा दो सिंपली। आपने बोला मेरे पास इतने बाय इतने का लैंड है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो आपको सीधे उसने फॉर्मूला बता दिया, राइट? हम जैसे भी एरिया निकालते हैं तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, मेरे पास एक घर है, इतने स्क्वायर फीट का घर है तो कितना एरिया होगा, राइट? तो हम निकाल लेते हैं ना उसका टोटल एरिया, की इतनी लेंथ इतनी ब्रेथ तो कितना एरिया होगा, तो हम कैसे निकाल पाते हैं कि ये फॉर्मूला है। अरे ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये कैसे पता पड़ा कि इस फॉर्मूला से सही निकल जाएगा एरिया? क्योंकि किसी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके अलग अलग शेप्स पर उसको करके फॉर्मूले को डिराइव किया है, राइट? ये बहुत सारे डिराइव किया है, अब वो डेराइव किया है तो वो किसी ने उसको प्रूफ किया है, तो आज हम जस्ट वो फॉर्मूला यूज करके ऑथेंटिसिटी से उसको यूज करते हैं कि पक्का यही एरिया होगा, डाउट नहीं है कोई दूसरा। ऐसे ही जो किसी ना किसी के, हम इसको अनुमान से जानते ना कि हाँ परमाणु होता है, मेरु पर्वत होता है, राम जी थे, तो हम जब ये जानते हैं तो मतलब किसी ने तो इसको रियल में जाना होगा, वो सर्वज्ञ है राइट, जो प्रत्यक्ष को जानता है। ये सर्वज्ञता की सिद्धि होती है राइट। तो सर्वज्ञता का टेस्ट क्या है कि चलो ये तो मान लिया कि कोई ना कोई सर्वज्ञ होगा, फिर विकराल अरिहंत देवी सर्वज्ञ है, ये कैसे पता पड़ेगा कि ऐसे पता पड़ेगा कि हम इनकी वचनों को पढ़ेंगे, हम बिना स्वाध्याय के रहेंगे तो कुछ पता ही रहेगा, स्वाध्याय तो जरूरी रहेगा, स्वाध्याय होगा तो हम ये देखेंगे कि यार जो छैडाला में बात कर रहे हैं विकराल विज्ञान का तीन भुवन में सार, वो वाली बात समय सार में आचार्य देव करते हैं, वही बात गोमत सार में करते हैं, वही बात पद्म पुराण में करते हैं, वही बात रत्नकरण शास्त्राचार में करते हैं, और ये चारों अलग अलग अनुयोग के ग्रंथ है, और एक भी जगह इनकी बात सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती, आपस में कोई विरोध नहीं मिलता, तो किसके वचन अपने आप से बाधित नहीं होते, उसके नहीं होते जो सर्वज्ञ होता है, जो सही बोलता है। तो भगवान आप सर्वज्ञ हो, क्यों आप सर्वज्ञ हो, क्योंकि आपके वचन इनमें अंतर विरोध नहीं है, ये युक्ति से न्याय से विरोध को प्राप्त नहीं होते, इसलिए आई हैव दिस कॉन्फिडेंस, मेरा ये पूरा कन्विक्शन है कि आप ही सर्वज्ञ हो, क्योंकि जगत के बाकी जितने भी ग्रंथ मैंने खोले उन सबके बीच बहुत अंतर विरोध है। वो एक जगह बोलते हैं कि पाप मत करो, पाप का फल बुरा है, फिर दूसरी जगह बोलते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे, ये तो अंतर विरोध है, या तो पाप परिणाम का फल बुरा होगा तो मैं आपकी शरण में नहीं आऊंगी, आऊ आपका फल पाप मिलना चाहिए, लेकिन वो बोलते नहीं तो मैं मेरी सेवा करो तो सब ठीक हो जाएगा। तो उनके वचनों में बहुत अंतर विरोध है, ये भगवान आपके वचनों में नहीं है, इसके लिए आप ही वह सर्वज्ञ हो राइट। ठीक है हेलो ठीक है। इस पे बहुत फैसिनेटिंग फैक्ट इसमें ये है कि जब तीर्थंकर का जीव होता है वो बचपन में जब जन्म से होता है तीन ज्ञान का धारी होता है राइट, तीन ज्ञान का धारी होता है बचपन से ही, उसके सारे कपड़े खाना पीना सब देवलोक से आता है, देवलोक ही उसके साथ बच्चे बन के खेलते हैं, उससे मिलने के लिए लालायित रहते हैं, उनके साथ ही क्रीड़ा करते हैं, बहुत पुण्य होता है उस जीव के बराबर, और इतना पुण्य इतना उनका बल कि उनको देखने के लिए मुनिराज लालायित रहते हैं, दिगंबर मुनिराज, उनको इच्छा होती कि चलो हम देख कर आए तीर्थंकर को, लेकिन वो सामने नहीं आ पाते उनके, मुनिराज सामने आएंगे तो तीर्थंकर के जीव को नमस्कार करना पड़ेगा परमेष्ठी को, और वो नमस्कार नहीं करता तीर्थंकर का जीव, तो मुनिराज भी उसके सामने नहीं आते। तो जैसे कि वर्धमान कुमार खेल रहे हैं राइट, और दो रिद्धिधारी मुनिराजों को शंका हुई, और शंका हुई और उनको लगा कि हमें शंका देख, हम उनसे उनको देखना भी है, तो वो गए और उन्होंने दूर से ही छिपके से खेलते हुए वर्धमान कुमार को देखा, और जैसे ही देखा उनकी शंका शांत हो गई, उनका समाधान हो गया देखते ही साथ, तो उन्होंने इनको नाम दिया सम्मति राइट।
हाँ।
ये कहानी है ना उसकी सम्मति, भगवान महावीर के पांच नामों की कहानी।
हाँ।
सम्मति। हाँ। तो कैसे कैसे है, देखो तीर्थंकर का जीव है उसको दर्शन मात्र से मुनिराजों की शंका का समाधान हो जाता है, तीन ज्ञान का धारी है, लेकिन जब तक वह केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, अभी तो युवराज है, अभी तो बाल्यावस्था में, अभी वे मुनि दीक्षा धारण करेंगे, मुनि दीक्षा धारण करेंगे फिर तप करेंगे, 12 वर्षों तक तप करेंगे, 1000 वर्षों का तप करेंगे अलग अलग तीर्थंकर, लेकिन इस बीच वो बिल्कुल भी उपदेश नहीं देते राइट। मतलब राजा ऋषभ देव उन्होंने असी मसी कृषि ये 6 प्रकार की कलाओं का तो उपदेश दे दिया कि कैसे खेती करना, कैसे धंधा करना, कौन सी कला होती है, वाद्य क्या है, शिल्प क्या है, ये सारी कलाएं बता दी, राइट। लोगों को सब पता चलने लगा, लेकिन उन्होंने ये बताया ही नहीं कि आहार कैसे देना। उन्होंने धर्म की तो कोई बात बताई नहीं किसी को भी,
राइट।
ये तो अजीब बात होगी। उन्होंने पूरी कर्म की बात बता दी, खेती कैसे करनी है, हथियार का संचालन कैसे होगा, राइट, व्यापार कैसे करना है, शिल्प कैसे करना है, ये सारी बातें तो हो गई, लेखनी कैसे करना है, आप राइटिंग कैसे करो, सब कुछ बता दिया उन्होंने। बट जब वो खुद आहार लेने 6 महीने तक निकले, तो उनके पढ़ाए हुए लोगों को यही नहीं पता है कि आहार कैसे दिया जाता है, बस उन्होंने सब बता दिया और ये काम की बात तो बता ही नहीं। ये क्या बात हुई? राइट, क्यों नहीं बोला? हाँ, अजीब है ना ये एकदम ही, मतलब आप पूरी बातें बता रहे हो दुनिया को, लेकिन आप भगवान महाभारत के युद्ध में जाके लड़ाई कर रहे हैं, श्री कृष्ण उनके पास आके पूछ लेते एक बार कि भैया कौन जीतेगा, तो उनके पास अवधि ज्ञान है, लेकिन वो अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, तो उन्होंने नहीं बताया कि कौन जीतेगा, बस मुस्कुरा दिए थोड़ा सा। अब मुस्कुरा दिए तो मतलब श्री कृष्ण समझ गए कि ये लोग जीतेंगे, बट उन्होंने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया ये? क्यों उपदेश नहीं देते हैं? क्यों ऐसे नहीं बताते हैं कुछ भी? कि यही सम्यक दृष्टि के ये शंकित अंग को दृढ़ करता है। देखो, तीन ज्ञान के धारी तीर्थंकर जन्म से, और मुनि दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान के धारी हो जाएंगे, बराबर। उनके ऐसा तो ज्ञान की विशदता है, और उनके प्रभाव ऐसा कि देखकर ही जीवों को सम्मिलित हो जाए, मुनिराजों की क्षमताओं का निवारण हो जाए, सब हो जाए, ऐसा उनका बाहर का सब कुछ अंतर बाह्य वैभव है, तो भी वे महा मुनिराज तीर्थंकर मुनिराज वे उपदेश इसलिए नहीं देते क्योंकि अल्पज्ञ का उपदेश सच नहीं होता, सर्वज्ञ का सच होता है, और उनको भी केवल ज्ञान नहीं है, वो केवल ज्ञान नहीं है तो उसके बिना जो कुछ भी कहेंगे वो सच नहीं होगा, वो किसी अपेक्षा से ठीक होगा लेकिन सच नहीं होगा, वो भी निश्चय में से सच होगा तो व्यवहार में से झूठा हो जाएगा, व्यवहार में से सच होगा तो निश्चय में से झूठा हो जाएगा, लेकिन वो सर्वांगीण सच नहीं होगा जो ओंकार में वाणी में निकलेगा, इसलिए क्योंकि उनको तो इस लोक में तीर्थ का प्रवर्तन करना है, वो कैसे ऐसा बोलते हैं अल्पज्ञ अवस्था में कि ये ऐसा है, क्योंकि अभी जो कुछ भी बोलेंगे दिव्य ध्वनि के सामने वो फीका पड़ जाएगा, इसके लिए तीर्थंकर जीवों को अल्पज्ञ अवस्था में उपदेश नहीं होता, राइट। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को इस दिव्य ध्वनि की, जिन वचन की, जिन शास्त्र की महिमा है कि अहो उन महामुनिराजों ने संपूर्ण अपने केवल ज्ञान से जिसका प्रकाश किया है उसको गर्दर देव ने गूंथा और आचार्यों की परंपरा से वो चल के आ रहा है, वो भगवान की दिव्य ध्वनि चल के आ रही है, ये झूठ कैसे होगी? मुझे इसमें बिल्कुल भी शंका नहीं है कि एकदम खरा सोना है, एकदम सच्चा है, ये उनको निशंकित अंग वहां प्रकट होता है। एक बार सर्वज्ञता का निर्णय हुआ, भगवान का निर्णय हुआ, सातत्व का निर्णय हुआ, तो अब भगवान जो बोलेंगे मुझे वो स्वीकार्य है, मुझे कोई शंका नहीं, बस हाँ वो जो शास्त्र में लिखी है वो भगवान की परंपरा का होना चाहिए, वे आचार्य वे ज्ञानी उस परंपरा के होने चाहिए, यदि वे उस परंपरा से है तो वो जो कहते हैं मुझे सब मान्य है।
बहुत ही सुंदर,
यही नहीं शंकित अंग,
बहुत ही इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि वैसे आचार्य भी हमेशा वैसे बोलते हैं कि ये तीर्थंकर की परंपरा,
वो यही बोलेंगे जो भगवान ने बोला, जैसा केवली शुद्ध केवली ने बोला मैं वो ही बोलूंगा, मैं दूसरा नहीं बोलूंगा कुछ, क्योंकि दूसरा बोलने की अल्पज्ञ की ताकत ही नहीं, वो जो कुछ ही बोलेगा वो झूठ हो जाएगा। कुछ भी बोलेगा, क्योंकि सर्वज्ञ को सामने रखकर यदि जिनवाणी का उपदेश किया जाए तो वो सच्चा है, यदि मैं अपनी बात करने लगूंगा तो वो सब झूठी हो जाएगी। कि मेरा ज्ञान प्रमाण ही नहीं है, प्रमाण तो सर्वज्ञ का केवल ज्ञान है, ऑथेंटिसिटी उसकी है, प्रामाणिकता उसकी है।
तो पंडित जी यहाँ वो जो प्रमाण नयात्मक ज्ञान की से वे बात करते हैं ना, तो वो वाला ही था।
हाँ हाँ हाँ
तो वो वाला जो आप
ये जो हमारा
हाँ वो वाला जो है ना वो आप मांसा में जो है कि वहाँ प्रमाण नयात्मक ज्ञान से बताते हैं कि, मगर वहाँ मुझे मालूम नहीं है कि वहाँ सत्य की स्थिति की बात है कि वहाँ ये जैसे जो भी ये क्या बोलते हैं केवल ज्ञान की क्या वो दूसरी तरह से देखना कि भगवान
वो सर्वज्ञता की देखिए क्या होता है, केवल ज्ञानी भगवान का उपदेश होगा, वो जिस उपदेश को करेंगे वो दिव्य ध्वनि में आएगा, वह निरक्षरी होगा, ठीक है, फिर उसको गणधर देव झेलेंगे और उससे भी द्वादशांग की रचना करेंगे। वचन है वो सीमा वाले हैं, वचनों की लिमिटेशन होती है, शब्दों की लिमिटेशन होती है, ठीक है, हम जो कुछ ही बोलेंगे वो या तो मैं अपने आप को या तो बालक बोलूंगा या पुरुष बोलूंगा या जैन बोलूंगा या इंडियन बोलूंगा या स्टूडेंट बोलूंगा या टीचर बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा, बट लिमिटेडली बोलूंगा ना, कि मैं एक बार में एक ही चीज बोलूंगा, राइट। तो शब्दों की सीमा होती है, इसके लिए दिव्य ध्वनि को निरक्षरी बोलना है, वो शब्दात्मक नहीं होती, क्योंकि यदि वो शब्दात्मक होगी तो लिमिटेड हो जाएगी, वो निरक्षरी होती है। वो उसको जब अपने सूक्ष्म ज्ञान से, अपने चार ज्ञानों से गड़गर भगवान सुनते हैं, तो शब्दों से उसका विभाजन द्वादशांग में करते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो उनका द्वादशांग कहलाता है प्रमाण, और उसमें जो जो भी स्यात् पद से विवक्षा हो जाती है वो कहलाता है नय। तो प्रमाण तो होता है, अभी हम सच्चा प्रमाण होता है केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान, और फिर जो विवक्षाकृत प्रमाण कहलाता है वो सम्यक ज्ञानी का श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान वो प्रमाण कहलाता है। तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तो सम्यक ज्ञान में पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान वो भैया वो सबसे बड़ा प्रमाण, उससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है, दैट्स द मोस्ट ऑथेंटिक ज्ञान सर्वांगीण। और फिर उस ज्ञान के अनुसरण से जिसने आत्म साक्षात्कार किया, उसने उस ज्ञान को वैलिडेट किया, बराबर, जिसने उस ज्ञान को खुद हस्ताक्षर उसमें अपने की क्या मैंने अनुभूति की उसको प्रमाण किया है, तो उसके चयोक्षम ज्ञान में, उसके श्रुत ज्ञान में प्रामाणिकता प्रकट होती है, लेकिन वह पूरा नहीं जानता, तो वह कंप्लीट प्रमाण नहीं है, वह जितना जानता है उतना ठीक जानता है, तो वो जीव को जीव रूप जानेगा, पुद्गल शरीर रूप नहीं मानेगा, ये उसके ज्ञान की प्रामाणिकता है। लेकिन जीव में कितने गुण हैं, कितने प्रदेश हैं, कैसा उसका वैभव है, ये तो केवल ज्ञानी का ज्ञान ही जानेगा, तो सच्चा प्रमाण तो वो ही है। बाकी जो हम समझते हैं ये सब अल्पज्ञ का प्रमाण है, तो हमारी जो शास्त्रों की व्यवस्था चलेगी वो शुद्ध ज्ञान वाले प्रमाण के हिसाब से चलेगी। लेकिन ये किसका बेटा है, ये किसकी संतति है, ये उस केवल ज्ञान से ही उत्पन्न है, जो कुछ भी है उस परंपरा से चला रहा है। यदि वो ज्ञानियों की परंपरा के बिना यदि हम मानेंगे कि नहीं मुझे ऐसे ही आत्म साक्षात्कार हो गया, मुझे पुराने जन्म के संस्कार थे तो मैंने जान लिया, तो वो वाले की प्रमाणिकता नहीं ठहरेगी। केवल ज्ञानी की शरण में ही, क्षत्र उनकी परंपरा में ही ये ज्ञान प्रमाणिक कहलाएगा। नहीं तो आजकल तो सब लोगों को कुछ कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हो ही रहा है, हर एक धर्म में हो रहा है, खुद रियलाइज करते हैं, नया धर्म निकालते हैं। एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है हिस्टोरिकल फैक्ट्स में, दो जब आई थिंक ये जर्मनी में रिसर्च हुई थी, जब वहां पर बहुत एक आई थिंक स्कूल ऑफ रिलीजन चलता है, स्कूल ऑफ फिलोसफी, रिलीजियस फिलोसफी चलता है, तो उन्होंने बेसिक जब डिस्क्रिप्शन उनसे पूछा गया कि यार बुद्धिज्म और जैनिज्म एक से रखते हैं, टाइम भी एक है, महावीर भगवान का और उनका, तो हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, तो दे पॉइंटेड आउट दिस थिंग। वहां पर जो
आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है,
उन्होंने बोला
अनुभव जी अभी आपकी आवाज नहीं सुनाई देती है।
શું થશે? હેલો.
હા
અભી ક્લિયર આ રહી હૈ? तो उन्होंने उनसे पूछा कि मतलब लोग कंफ्यूज करते थे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म एक से ही लगते हैं, एक ही टाइम पर बुद्ध हुए और महावीर हुए, ये दोनों धर्म एक से ही है या एक ही होंगे, राइट? ऐसा कई लोग कंफ्यूजन भी करते थे, कई लोग मानते थे ऐसा है. तो जैन धर्म को तो वहां पर उन्होंने कितना सुंदर पॉइंट आउट किया कि देखो बुद्ध देव कहते हैं कि उनको सत्य की प्राप्ति हुई, आत्म साक्षात्कार हुआ और उन्होंने एक नया रास्ता निकाला, द मिडिल पाथ, राइट? उन्होंने पहले दूसरे धर्म की साधना करी थी, फिर वो उनसे नहीं हुई, बहुत कठिन लगा, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और बुद्ध देव ने बोला कि हाँ मुझे बोधी की प्राप्ति हुई यहाँ पर, और फिर उन्होंने पूरा मार्ग बताया, राइट? तो बुद्ध देव के जीवन से तो ये पता पड़ता है कि वे शोध कर रहे थे, उनको खोज करनी थी, तो उन्होंने किसी दूसरे गुरु से मतलब जैन साधुओं से दीक्षा ली थी और फिर उनको वो रास्ता सही नहीं लगा तो उन्होंने फिर अपनी बोधी को प्राप्त करके बोला कि मुझे नई, मैंने एक नए चमत्कार को प्राप्त किया है, मतलब मैंने एक नया रास्ता निकाला है. जबकि महावीर ने ऐसा कुछ नहीं किया, महावीर को पहले से पता था, ऐसा उन्होंने रिसर्च में लिखा कि महावीर को ऐसा पहले से पता था, उन्होंने किसी दूसरे गुरु से दीक्षा लेकर कोई नया रास्ता नहीं निकाला, उनको पता था कि क्या करना है, उन्होंने वह दीक्षा ली, उस मार्ग पर आगे बढ़े और केवल ज्ञानी हुए. और उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैंने नया रास्ता निकाला, उन्होंने तो अपने आप को 23 तीर्थंकरों की संतति का बताया. तो इससे पता पड़ता है कि बुद्ध धर्म अलग है और महावीर भगवान का धर्म महावीर भगवान का नहीं है, ये तो बहुत पहले से चला आया, जैनों का बहुत ही सुव्यवस्थित वैज्ञानिक धर्म है जो नया नहीं निकाला गया, और इससे ही इस धर्म की ऑथेंटिसिटी है, प्रामाणिकता है. जैन धर्म में किसी कोई ने ऐसा, और फिर उन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखी, यदि महावीर भी ऐसा नया धर्म निकालते तो उनको मानने वाले ये कहते कि महावीर भगवान ने नया धर्म निकाला, लेकिन दुनिया तो कहती है कि जैन धर्म महावीर भगवान ने निकाला, लेकिन जैन ही लोग नहीं कहते, वो तो ही कहते हैं कि ये तो पूरा तीर्थंकरों की परंपरा से चला आ रहा है, राइट? तो जितना भी हमारा जो कुछ भी जैनिज्म है, ये कोई हवा में निकल कर आया, किसी ने आविष्कार किया हो, ऐसा नहीं है, ये तो सर्वज्ञता का शासन है. इसकी ऑथेंटिसिटी ही ये है कि आदिनाथ भगवान भी होंगे तो वे प्रॉपर, उनको पता है क्या करना है, वो नया कुछ खोज कर नहीं बताएंगे, उनके पूर्व अनंत जो सिद्ध हुए उसी भेद विज्ञान को करते हुए, उसकी साधना करते हुए वे उस कार्य को करते हैं. तो मतलब कितना उन्होंने एकदम इसको मेंशन किया कि देखो महावीर को पता था कि उनको क्या करना है, मतलब उनके मत में उनको सब व्यवस्थित पता था कि मोक्ष का मार्ग क्या है और उनको उस पर शंका नहीं थी, उन्होंने सुव्यवस्थित राज्य किया और उसके बाद दीक्षा ली और दीक्षा लेकर साधना करके केवल ज्ञान लिया, वो किसी अन्य गुरु के पास है शोध करने के लिए नहीं गए, ना किसी से सीखने गए, उनके कोई गुरु नहीं पता पड़ते. ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि एक सुव्यवस्थित केवल ज्ञान प्रमाण सदियों से चल रहा है जिसमें दर्दरों की, केवलियों की, आचार्यों की और ज्ञानियों की परंपरा से हमको सीधे केवल ज्ञान का निचोड़ मिलता है और उस निचोड़ को हम पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते हैं जिससे यहाँ पर धर्म की परंपरा चलती है सर्वज्ञ के शासन पर और वह मार्ग पूरा का पूरा वैसा का वैसा बना रहता है, ऑथेंटिक विदाउट एनी डाइल्यूशन, राइट? तो ये नई शंकिता ऐसे आती है. पंचासी का संग्रह ग्रंथ की 172 गाथा है, 172वीं गाथा आखिरी की सेकंड लास्ट गाथा है, राइट? उस पे अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका में लिखा कि यह भागवत शास्त्र, भागवत, राइट? और भागवत का मतलब फिर वहां पर लिया परमेश्वरी, मतलब परमेश्वर का कहा हुआ, बराबर? कैसा शास्त्र है वह? परमेश्वर का कहा हुआ भागवत. वहां पर फिर ऐसी चर्चा आई कि देखो कैसे भागवत है कि विचार करें हम, हमको यदि आप 100 साल पुराना यदि कोई घर ढूंढने जाएंगे आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं तो मुश्किल है कि हमको मिल जाए। वो तो भी पुरानी पुरानी सिटीज में वो भी कोई कोई एक एक दो दो बिल्डिंग्स मिल पाती है हमको जितनी पुरानी होती है 200 ईयर्स ओल्ड 300 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, या तो पुराने मंदिर ही होते हैं कि चलिए 700 साल पुराना मंदिर है, राइट। बाकी नहीं तो सबका या तो रेनोवेशन हो जाता है या छूट के गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, सिटीज खत्म हो जाती हैं, बंजर बन जाते हैं, राइट। बट हमारे पास जो ये ग्रंथ है आचार्य कुंजकुंज देश के, वो 2000 साल पुराने, 2000 ईयर्स ओल्ड, 2000 साल पुराने। और 2000 साल में यदि हम इतिहास को देखें तो प्रिंटिंग प्रेस को तो अभी 100 साल ही हुए होंगे, आई थिंक वो भी नहीं हुए, राइट। उसके पहले तो ना वॉटर प्रूफ इंक होती थी, सब हैंड राइटिंग होती थी, हाथ से लिखते थे जो होता था, और उसके पहले तो इंक भी नहीं होती थी, तार पत्रों में लिखा जाता था छीक कर करके, राइट। वहां पर अमृतचंद आचार्य देव ने लिखा है क्या है, पारमेश्वरी शास्त्र है। पारमेश्वरी शास्त्र को तो हम समझे पारमेश्वरी का मतलब क्या है कि देखो 2600 साल पहले तीर्थंकर महावीर की दिव्य ध्वनि थी, उस दिव्य ध्वनि को गौतम गढ़धर श्रुत केवली महागढ़धर उन्होंने झेला और उन्होंने द्वादशांग में उसका विभाजन किया, फिर वह श्रुत केवलियों की परंपरा से वह दिव्य ध्वनि, वो की वो दिव्य ध्वनि जो महावीर भगवान ने दी है, वो की वो दिव्य ध्वनि विदाउट एनी कुछ कुछ भी उसमें मिलावट नहीं है, कुछ भी इधर उधर का नहीं मिला उसमें, मतलब एक यानी कि छोटा सा धर्म है बुद्ध का, बुद्धिज्म, बट आप बुद्धिज्म को देखो तो 2500 साल में उसमें कितनी मिलावट आ गई, राइट। हम श्वेतांबरों को देखते हैं, राइट, श्वेतांबरों का थोड़ा सा टाइम हुआ है, कितना हुआ है कि वकाल पड़ा था भद्रबाहु के टाइम पर, राइट। लेकिन उसके बाद श्वेतांबरों में कितने डिविजन आ गए हैं, हीरापन दीपन मूर्ति पूजा स्थानकवासी ये वो, राइट, करेक्ट। लेकिन जो महावीर भगवान की शुद्ध परंपरा चल रही है कुंजकुंज नामना है, आज 2600 साल हो गए हैं, इसमें अभी भी तत्व संबंधी एक मिलावट नहीं है, एक एक अंश की मिलावट नहीं है। जो मूल परंपरा के ग्रंथ है, चाहे वो हम 2000 साल पुराने कुंजकुंज आचार्य देव के देखें, 1000 साल पुराने अमृतचंद आचार्य देव के, अकलन देवाचार्य के, समंत भद्राचार्य आदि के देखें, कुछ और साल पहले के गुरुभद्राचार्य आदि के देखें, या हम फिर टोडरमल जी के देखें, ज्ञानक राय जी के देखें, दुर्जन जी के देखें, भाख्यन जी के देखें, देयर इज नॉट अ सिंगल इसमें डाइल्यूशन मिलावट नहीं। तो 2600 साल पहले भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, उसको गढ़धर ने झेला, फिर श्रुत केवलियों की परंपरा से पहुंचते पहुंचते अंग पूर्व के धारी मुनिराजों के पास पहुंचा, आचार्य धर्मसेन देव के पास पहुंचा, आचार्य कुंदकुंज देव के पास पहुंचा, और उन्होंने इन शास्त्रों की तब रचना करी। तो पहला तो ये पारमेश्वरी शास्त्र क्यों है, क्योंकि कुंदकुंज आचार्य देव की जागीर नहीं है, ये उन्होंने नहीं लिखा है, ये परमेश्वर तीर्थंकर देव का लिखा हुआ शास्त्र है, उनकी परंपरा में हुआ, फिर इसका परमेश्वरपना और बढ़ गया कि अकेली महावीर भगवान की विशुद्ध परंपरा का नहीं है। देखो वो महाकुंदकुंज आचार्य देव विदेश क्षेत्र में गए और वहां पर उन्होंने 7-8 दिन बाद दिव्य ध्वनि साक्षात सुनी और महावीर भगवान की परंपरा में जो उन्होंने गाना था उस परंपरा को उन्होंने साक्षात सीमंदर भगवान के यहाँ जाकर प्रमाणित किया कि अरे जो हम परंपरा से सुनते हैं वो साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि में तो ऐसा ही आया है। मतलब 600 साल से पहले हो गए थे ना आचार्य कुंकुम देव महावीर भगवान के, 500 साल बाद हुए, 600 साल बाद, राइट। तो 500-600 साल तो बहुत होते हैं, कुंडरमल जी 300 साल हो गए उनको, 250 साल हुए, कितना लंबा काल हो गया। तो ऐसे महावीर भगवान को 500 साल बाद कुंकुम आचार्य देव हुए तो कितनी पीढ़ियां, हमें भी एज माने तो चलो 90-100 साल की एज होती होगी, कितनी पीढ़ियां निकली होंगी उनकी, 5 तो निकली होंगी कम से कम, राइट, महावीर भगवान की बात की। राइट, उतनी जनरेशन तो निकल गई होंगी ना, 5 सेंचुरीज निकल गई, तो थोड़ा तो डाइल्यूशन हुआ होगा ना, तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि में थोड़ा तो होगा, रहती होती होगी दिव्य ध्वनि, सच में ऐसी है क्या? तो आचार्य कुंदकुंदी विदित क्षेत्र गए और वहां पर उन्होंने उसको प्रमाण किया कि यार जो हम विदित, हम भरत क्षेत्र में सुनते हैं अपने आचार्यों से जो हमने सीखा है, वो तो बिल्कुल वैसा का वैसा 24 कैरेट का जैसा है, यहाँ आचार्य भगवान सीमंदर देव बताते हैं वैसा का वैसा तत्व है। और पुनः उसको सुनकर आप बताइए आप कैसा आचार्य कुंदकुंद देव का गार्ड सम्मित हुआ होगा कि जो हमने बचपन में 11 वर्ष की उम्र से जिन प्रविज्ञा धारण करी और ऐसा तप किया और जो सीखा, अरे वही का वही हम सीमंदर आज भगवान बता रहे हैं, वैसे ही का वैसा बता रहे हैं, इसके अलावा जगत में सच और क्या है? और वापस आकर उसको फिर उन्होंने लिखा, तो देखो डबल वैलिडेशन है, तीर्थंकर महावीर भगवान की परंपरा में सीमंदर भगवान देव ने उसको वैलिडेट किया, वो सूत्र इस ग्रंथ में लिख कर आए हैं, इसलिए ये पारमेश्वरी शास्त्र है। राइट, मतलब हम हमारी हेरिटेज ये थोड़ी है कि ये वाली चलो 1000 साल पुराने बिल्डिंग्स हमारे पास हैं, ये 1000 साल पुराने मंदिर हमारे पास हैं, ये थोड़ी हमारी हेरिटेज है। देखो हमारी हेरिटेज ये है, हमारी विरासत ये है कि हमारे पास विदेश क्षेत्र से आए हुए सीमंदर भगवान के शब्द हैं, हमारे पास 2000 साल पुराने आत्म साक्षात्कार किए हुए विदेश क्षेत्र से लाए हुए महावीर भगवान की परंपरा के बिना किसी विरोध के वो साक्षात केवल ज्ञान का शब्द में रूप हमारे पास है। ये जब ज्ञानी आत्म साक्षात्कार करते हैं उनको मुनिराजों के वचनों में शंका नहीं होती, ये निशंकित अंग उनको प्रकट होता है, अरे आचार्यों की परंपरा से जो चला आया वो तो सच ही है। और देखिए कई चीजों पर आचार्यों के अंतरंग अलग अलग मत भी होते हैं, बराबर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर आचार्यों के मत होते हैं कि ये वाले आचार्य इसमें ऐसा मानते हैं, ये वाले आचार्य ऐसा मानते हैं, तो कहीं भी आचार्य ऐसा नहीं लिखते कि नहीं ये वाला ठीक है कि ये वाला ठीक है। जब भी टीकाओं में मेंशन होता है ना कि यहाँ पर आचार्य ने ये लिख दिया, यहाँ पर ये वाला भी मत है, बराबर, तो आचार्य वहां पर ऐसे लिखते हैं कि देखिए ये वाली परंपरा में ये मत है और ये वाले आचार्य का ऐसा भी कहना है, वो सच और झूठ नहीं बोलते, तो परंपरा में लिखा आया है तो दोनों आचार्यों के मत को फिर स्पष्ट बता देते हैं। कितनी गौरवमयी परंपरा है हमारी, ये साक्षा झूठा क्या परंपरा से चला आया परिष्कृत है, जिनेन्द्र देव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, वह सच्चा है, वह प्रमाण है और उसको परंपरा से मान लिया जाता है। ऐसे पवित्र शासन में सर्वज्ञ देव कहे हुए तत्वों में संशय संदेह धारण नहीं करना, ये निशंकित अंग है। इतना बहुमान उसको जयेंद्र देव के वचनों का होता है कि आपकी और हमारी बात थोड़ी कि हमने जो मन में आया वो लिख दिया, वो किताब बन गया और वो ग्रंथ बन गया, ये तो तीर्थंकरों ने कहा और श्रुत केवलियों ने परंपरा दर परंपरा अपने आचार्यों के संगों में इसको पढ़ाया, उपाध्यायों ने इसकी कक्षाएं ली और फिर किन्हीं महा मुनिराजों ने उसको लिपिबद्ध किया और फिर किन्हीं साधर्मियों के सर्वेक्षण में, किन्हीं साधर्मियों की क्या बोले सेवा में उन्होंने उसको सिक्योर्ड किया, सिक्योरिटी में वो आज हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी करके वैसा का वैसा एक एक सूत्र 415 की 415 गाथाएं समय साल की बिना एक गाथा बीच की गायब हुई हमारे पास पहुंच गई। मतलब देखिए हमारे पास पहुंचना तो फिर भी आपको सरल लगता होगा, कुंकुंद आचार्य देव और अमरचंद आचार्य देव के बीच में 1000 साल का अंतर है, 1000 ईयर्स, राइट, 1000 साल तक पहले तो अमृतचंद्र आचार्य देव को समय सार का मिलना, ये कितना बड़ा आश्चर्य की चीज है कि उस टाइम तो प्रिंटेड बुक नहीं है ना, वो तो तार पत्र में ही चल रहा है, और उसके बाद 1000 साल बाद उसका अर्थ निकाल पाना कि आचार्य कुंकुंद देव क्या बोल रहे हैं, वो 1000 साल बाद भी अमृतचंद्र आचार्य देव को अर्थ ख्याल में आ रहा है, मतलब कैसी पुनीत परंपरा के आचार्य हैं ये लोग, क्या इनको एक एक बार एक एक जिन जिन आचार्यों से दीक्षा ली, जिन जिन संघों में रहे, उन संघों में कैसे आचार्य होंगे दिग्गज जिन्होंने महावीर भगवान की देशना को उसके मूल रूप में एक दूसरे को ट्रांसफर किया। एक गौरवमयी हमारी परंपरा है, जो गजब का यू नो एलिमिनेशन सिस्टम है, भगवान महावीर की एलिमिनाई है ये सब, आचार्य देव, अमृतचंद्राचार्य देव, और कितना स्ट्रॉन्ग इनका एलिमिनस एसोसिएशन है कि इनकी एक कहीं कोई त्रुटि विरोध नहीं निकाल सकता, ऐसे शासन में शंका नहीं होना, ये लेशन के संघ है। ये सर्वज्ञ की महिमा आए बिना, उसका ज्ञान हुए बिना इसका पता नहीं पड़ता। तो हमें बहुत अच्छे से निर्णय करना है कि सर्वज्ञ है, यही वो भव को तारने वाले शास्त्र है, ये समय सार के श्रद्धान से इसके वचनों के अनुपालन से ही मुक्ति होगी। आचार्य बोल रहे कि 6 महीने आत्मा का तुम एक बार समीप तो आके देखो, फिर नहीं होगा तो हमसे नहीं जाना, ये आचार्य झूठ नहीं कहते, ये सच्ची बात करते हैं। आचार्य कहते हैं कि देखो स्वरूप तो ऐसे ही है, मैं क्रोध नहीं, मैं मान नहीं, मैं मार्गना स्थान नहीं, गुण स्थान नहीं, ये जो कहा जा रहा है ये एकदम सच्ची बात है। मैं तो ज्ञान हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं, ये प्रामाणिक, ये कुनकुंड आचार्य देव नहीं कहते, ये तीर्थंकर देव महावीर भगवान तीनंदर भगवान कहते हैं। ऐसा वह प्रमाण करता है तो उसकी निशंकता आती है। ये निशंकित अंक की चर्चा हम यहाँ करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन इस पर?
तो मुझे पंडित जी, ये आपने जो बताया ना, ये संबंध भद्राचार्य की आत्मा आकांक्षा, वो उसमें से जो 3 प्रकार के पदार्थ से बताया, और बोला कि अनुमान से अपन बोल सकते ऐसे सर्वज्ञ हो गए, तो फिर और जो
अनुमान,
और जो आपका मीमांसा में है, तो वहाँ जो बताते हैं कि जैसे वहाँ लक्षण निर्देश वगैरह की बात आती है ना, परीक्षा वगैरह की बात,
करेक्ट,
तो उसमें क्या सिद्ध करना मांगते हैं कि
वहाँ सर्वज्ञता की, वहाँ पर 3 लक्षण बताए आप, मोक्ष मार्ग से नेतारम, भेतारम कर्म भूतम, ज्ञातारम विश्व तत्व नाम वंदे सत्य लभे, मतलब जो भीतरा ही सर्वज्ञ रितोपदेशी हो वह मेरे लिए आप्त है। तो आपका जो सर्वज्ञता वाला लक्षण है उसकी परीक्षा वहां पर करी कि इज इट पॉसिबल कि कोई सर्वज्ञ होता भी है जो हम आप्त को मानकर नहीं तो इमेजिनरी गॉड नहीं बन के रह जाए, वो एक रियल पर्सन हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो उन्होंने 2 तरीके से बोला, पहले तो बोला कि दोषावरण योर आने नेशनाथ, ये सब सबके दोष और आवरण, मतलब राग द्वेष ये दोष, और ज्ञान का कम ज्यादा होना ये आवरण, ये सबके कम ज्यादा होते दिखाई देते हैं। तो किसी ना किसी के ऐसा भी होगा जो पूरा निर्दोष हो और जिसके पूरा आवरण चढ़ा गया, मतलब पूरा ज्ञानी हो, ये पहली बात इन्होंने करी। फिर दूसरी करी कि देखो सूक्ष्म आंतरिक और दूरवर्ती पदार्थ, ये हम सबके अनुमान के विषय तो बनते हैं, जो किसी के अनुमान का विषय बनता है वो नियम से किसी ना किसी के प्रत्यक्ष होता है। तो क्योंकि ये हमारे अनुमान के विषय है, मतलब कोई ना कोई इनको जान रहा है पक्का, जो जान रहा है वही सर्वज्ञ है। तो ऐसा कोई सर्वज्ञ होता भी है दुनिया में कि हाँ मैंने जिनेंद्र देव के वचनों को पढ़ा है, उनके वचनों में कहीं अंतर विरोध नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसलिए मुझे पता पड़ता है कि हाँ यदि कोई सच बोलने वाला है, किसी ने यदि सम्यक वस्तु स्वरूप को देखा और जाना है, वो जिनेंद्र जी है, इसलिए मेरे लिए यही सर्वज्ञ है। ये सिद्धि वहां पर करी है। इसके बाद फिर वो आगे की बात करेंगे कि हाँ ये अच्छा ऐसे सर्वज्ञ है तो इनकी बात फिर माने, हम त्यागवाद को हम माने, ये वाली बात है वहाँ।
तो वो दोनों ग्रंथ अलग है ना, जैसे संबंध भद्राचार्य ने लिखे है ना दोनों?
हाँ, आत्मी मानसा,
और
कौन सा दूसरा?
वो और जो आपने बताया आत्मा आकांक्षा, वो और मैं बराबर समझी नहीं, मालूम नहीं,
नहीं आपनी मानसा और देवान देवान देगा एक ही ग्रंथ है, अलग अलग नहीं है, यही ग्रंथ है। ये तथा सूत्र ग्रंथ का जो मंगलाचरण लिखा उमा स्वामी आचार्य ने, इस ग्रंथ के मंगलाचरण की टीका में आचार्य संबंध भद्रदेव ने 114 गाथाओं में उसकी टीका की है, उसको हम देवागम स्रोत बोलते हैं या आत्मी मानसा बोलते हैं।
और आपने जो बताया
चीज है तो ये न्याय का पहला ग्रंथ है, जैन न्याय का।
हाँ जी, मगर जो आपने बताया आत्मा आकांक्षा, हाँ। वो अलग ग्रंथ है।
आत्मीमांसा ग्रंथ की कारिका है,
इसकी
पांचवी और छठवी कारिका है। पांचवा और छठवा श्लोक है ग्रंथ का, चौथा पांचवा छठवा, ये तीन
मीमांसा का ही पांचवा छठवा श्लोक है।
हाँ हाँ, पांचवा चौथा पांचवा छठवा निशावरण योरहाने निशिशास्त्र शायना, उसके बाद सूक्ष्मांतरित दूरार्था और फिर सात्वमेवासी निर्दोष हो, तीनों में सामान्य और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कर दी उन्होंने। ये इससे सर्वज्ञ का निर्णय करने के बाद सम्यक दृष्टि जीव को शंका नहीं होती, अब जो है अब जो होगा तो होगा, सामने शरीर को खाए जा रहे हैं शेर तो खाए जाओ, उनको पता है कि देखो अपने उपयोग को आत्मा में एकाग्र करने से ही छुटकारा है, शेर खाता है तो उसको हटाते नहीं है, उनको सर्वज्ञ देव की बात पर श्रद्धा है कि हम शुद्धोपयोग में लगे रहेंगे तो कर्मों की विर्जरा होगी, तो लगे रहते हैं और वो शंकित नहीं होते कि नहीं नहीं पहले बच तो जाए, नहीं तो ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उनको निशंकता होती तो केवल ज्ञान ले लेते हैं। ये भगवान के तत्व पर शंका नहीं करने का फल है। ठीक है, आपकी कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, अपना टाइम हो गया आज का।
थैंक यू।
ठीक है, तो नेक्स्ट में कांक्षित अंक से नेक्स्ट क्लास पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं स्थिति कर लेते हैं। बताइए अनंत उपकार है उसके लिए, चिन्हवाणी माँ को वंदना शक्ति उसके लिए, नमस्कार।